ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ हैं। बात कर रहे हैं माइंड मैटर्स की। मन के कई सारे एस्पेक्ट्स को समझा और हम बात कर रहे थे पिछली कड़ी में अपने बच्चों की। जहां बच्चों की बात आती है हम सब अवेयर हो जाते हैं, हम सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब बाहरी हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आई थी कि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस के भी मायने शायद हम नहीं जानते थे लेकिन अब समझ में आया है, तो वो जो स्ट्रेस चाहे मुझ में ही है, बच्चे से जुड़ा है या मेरे जीवन से जुड़ा, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को छूता है और उसके पूरे जो सर्कल है, ऑरा है, उसमें भी आने लग सकता है। और फिर उससे जुड़े हुए स्ट्रेस जो मेरे पास है और जो मैं उसकी ज़िंदगी में देता हूँ, वो भी मुझे देखने की ज़रूरत है। अगर इनको नहीं रोका, अगर इनको नहीं समझा, तो क्या हो सकता है मेरे बच्चे की ज़िंदगी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं वेल नोन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। अब दोनों का स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
अब डॉक्टर साहब, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है। अगर इसको यहाँ नहीं हमने रोका तो क्या होगा हमारे बच्चों की ज़िंदगी में?
स्ट्रेस जो है वो ऐसा नहीं है कि आज हुआ और कल उसका रिजल्ट दिखेगा, और अगर एक तरह का हुआ तो उसका रिजल्ट इस तरह का ही होगा, क्योंकि इसमें कई तरह के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि कुछ बच्चे हैं जो कि जेनेटिकली कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स को प्रीडिस्पोज्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें वो माहौल ना बने तो शायद वो उस चीज़ में जाने से बच जाए। अगर वो माहौल भी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, और वो प्रॉब्लम चलनी शुरू हो गई और हम उसे चलते रहने देते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स उसी समय बचपन में शुरू हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, या वो बच्चा जितना अच्छा दूसरों से मिलना है वो नहीं कर रहा, या जिस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, या वो एक्सेसिवली कॉम्पिटिटिव है, या एक्सेसिवली बुलिंग करता है दूसरों को स्कूल के अंदर, या बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पे ही कुछ बच्चे माँ की गोदी में ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं क्योंकि उनको कोई ख़ास चीज़ चाहिए, और जब तक नहीं मिलती तो वो इतना एम्बेरेसमेंट कर देते हैं, जिसको हम टेम्पर टेंट्रम्स बोलते हैं। उसी तरह से कुछ हार्ड कोर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बचपन में शुरू हो सकती हैं। अगर बचपन में ना भी हो और वो बच्चा और वो परिवार उसके स्ट्रेसेस को किसी तरह से इतना ना बढ़ने दे कि कोई प्रॉब्लम हो या बीमारी बने, लेकिन वो फ्यूचर के ज़िंदगी के लिए उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि पर्सनालिटी भी इसी समय में डेवलप होती है। तो अगर पर्सनालिटी को डेवलप होने में कोई कमियां रह जाती हैं, या एक ख़ास तरह की एक्सट्रीम पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो वो बाद में जाके एडोलेसेंस में या फिर एडल्टहुड में, कई बार आपको पीछे मुड़ के याद आता है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो स्ट्रेस था, उस समय दबा दिया, लेकिन बाद में भी वो जब मौका निकला या सर्कमस्टांसेस बने तो वो उभर के आया। अर्लीस्ट जो बच्चों में स्ट्रेस देखे जाते हैं वो आमतौर पे, क्योंकि फैमिली में अंदर होते हैं 5 साल की उम्र तक, तो या तो सिबलिंग्स के अंदर आपस में राइवलरी, उनको लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे भाई को या बहन को दिया गया, आमतौर पे भाइयों के बारे में बात होती है, क्योंकि बहुत कम फैमिलीज हैं जहाँ पे कि बहनों को ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो बहन को लगता है कि भाइयों को ज़्यादा दिया गया, जो छोटे को लगता है कि बड़ों को दिया गया, या कई बार एक किसी का स्पेशल टैलेंट होता है तो हम उसको बढ़ाने में इतना उसको आगे लेके आते हैं कि दूसरों को लगता है कि वो कुछ है ही नहीं और उनको या दबाया जा रहा है। दूसरा, परिवारों में खास तौर पे अगर कजन्स हैं और वहाँ पे कंपैरिजन्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर बच्चों में आपस में जो वो रिश्तों में कड़वाहट है, वो कड़वाहट कई बार पूरी ज़िंदगी चलती है, और वहीं से वो बीच ये भी पनपता है दैट जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ यू हैव टू बी बेटर देन समबडी एल्स, और वो कई बार चीज़ें घरों के अंदर से ही शुरू होती हैं। पेरेंट्स कई बार इसको मोटिवेशन के रूप में लेते हैं कि अच्छा, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसको ये कह रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है ये उनके लिए कहना मुश्किल हो जाता है, और वो फिर जो मन में सोच बच्चे के चल रही है वो चलती रहती है। जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू होता है तो वहाँ के स्ट्रेसेस, खासतौर पे कई स्कूल्स हैं जो अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए प्रेशर्स देते हैं कि बच्चा अगर एक तरह से परफॉर्म नहीं करेगा या इतनी चीज़ों में परफॉर्म नहीं करेगा देन दे आर नॉट एक्सेप्टेड। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर क्लासेस हैं और वो क्लासेस सिर्फ रैंडमली ए बी सी डी नहीं है, ए का मतलब है सबसे स्मार्ट बच्चे और डी का मतलब है सबसे वो बच्चे, और फिर कहा भी जाता है कि देखो तुम्हें अगर अच्छा करोगे तो डी से सी में आओगे। तो बच्चा हर समय सोच रहा है कि अच्छा उसके ऊपर लेबल भी लग गया कि मैं डी में हूँ, दूसरे उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके कुछ स्ट्रेसेस शुरू होते हैं। और अगर कुछ बच्चे, हर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की उतनी एबिलिटीज़ हो, और अगर प्रेशर है टू कीप परफॉर्मिंग, तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं कुछ बच्चे दूसरों से पिछड़ते जाते हैं, और वहाँ पे जो उनका प्रेशर है उसकी वजह से और वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बिकॉज वी नो वेरी वेल नाउ कि अंडर स्ट्रेस योर एबिलिटी टू डिलीवर गोज डाउन, और अगर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं तो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा उभर के आएंगी। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा और बढ़ता जाता है, और ख़ास तौर पे आज के समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाती है उनकी ज़िंदगी में, तो कई बार वो टेक्नोलॉजी में बहुत फंस के रह जाता है। एंड वी सी मैनी चिल्ड्रन नाउ विदड्रॉइंग फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स, या पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि अच्छा तुम इस चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट करो, तुम अपने में लगे रहो, तुम कोशिश करो कि थोड़ा भी टाइम ना वेस्ट हो, तुम आके ये चीज़ भी सीखो वो चीज़ भी सीखो, गो ऑन द इंटरनेट, लर्न मोर। और कई बार उसकी वजह से बच्चे रिक्लूज बनने शुरू हो जाते हैं। इसी समय में कुछ बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्पेशली स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन, 11-12 साल के उम्र के जो हैं उनमें जब वो होने शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से कई तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली माँ बाप को ये देखना चाहिए कि अगर बच्चे की जो पोटेंशियल थी वो कम हो रही है, जितने नंबर आते थे उससे कम हो रहे हैं, या जितना वो पहले दूसरों के साथ मिलता था, बातचीत करता था, वो सडनली कम हो रहा है या धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या जितना अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहा था उसमें कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, या अगर सब्जेक्ट्स में भी देखें कुछ में ठीक है कुछ में नहीं है, या उसको रात को नींद नहीं आ रही, या भूख लगनी कम हो गई है, या सोशलाइजेशन कम हो गई है, या बहुत ज़्यादा विड्रॉन रहता है, या बहुत ज़्यादा रोता है, या बहुत डर के रहता है, जो कि उसका नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम शुरू हो गई है। स्ट्रेस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग इट, मैनी ए टाइम्स देयर कुड बी, स्पेशली नाउ वी नो कि अनफॉर्चुनेटली बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ भी जो है वो काफ़ी होता है, एंड नॉट ओनली फॉर गर्ल्स,
बॉयज
ऑल्सो बॉयज। तो अगर आप उसके बिहेवियर में ये कुछ चेंजेस देखते हैं देन वन हैज़ टू बी अलर्ट कि कुछ ठीक नहीं है। और फिर उस स्टेज पर फर्स्ट लेवल इज खुद ठीक करें, सेकेंड लेवल इज कि पेरेंट्स प्लस टीचर्स ठीक करें, थर्ड लेवल इज स्कूल काउंसलर के साथ मिलकर ठीक करें, इफ नॉट देन मे बी अ थेरेपिस्ट। कुछ बच्चों में मेडिसिंस की भी जरूरत पड़ सकती है, बट वो सब इवैल्यूएशन के बाद।
ये जो हम खुद ही फोर्स कर रहे हैं उनको उस तरफ जाने के लिए, क्यों हम उस तरफ भेजते जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है अगर हमने नहीं किया तो वो बहुत कम्प्लेसेंट हो जाएंगे, यू नो, वो अपनी पोटेंशियल को नहीं दे पाएंगे अनलेस और अंटिल वो वी पुश। हाउ मच टू पुश?
किसी से हम मिले जिनके बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, अब वो बोर्ड एग्जाम में आ गए तब भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, सो नाउ व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज कंपेयर इट विद द अदर पीपल। जैसे आपने औरों के साथ कंपेयर किया तो आपकी मन की स्थिति चेंज, बच्चे के मन की स्थिति चेंज, घर का पूरा वातावरण चेंज, लेकिन बाकी सब क्या आ रहे हैं, इसका क्या होगा, आगे क्या होगा, वी नीड टू इवेल्युएट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट चाइल्ड्स कैपेसिटी, एंड फिर उसकी प्रेजेंट कैपेसिटी को एक्सेप्ट करते हुए हम उसके साथ इंडिविजुअली वर्क करते हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें एक थॉट में भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करते। हर एक फर्स्ट नहीं आ सकता, सी दिस इज समथिंग विच वेदर वी लाइक इट और नॉट वी नीड टू एक्सेप्ट। किसी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पुश करेंगे तो कहीं कोई और ऐसा डैमेज नहीं हो जाए। अगर मैं फिजिकली उतना नहीं चल सकती और आप पुश करें तो आई विल फॉल, एंड वंस आई फॉल आई माइट प्रोबेबली नेवर बी एबल टू वॉक प्रॉपरली अगेन. सो देन जिम्मेवारी आपकी बहुत बड़ी उसमें हो जाती है कि आपने मेरी कैपेसिटी को देखे बिना या दूसरे कितना कर रहे हैं उसको देखकर आपने पुश किया. तो लेट्स ट्रीट एवरीवन इंडिविजुअलिस्टिकली. यू नो, ये कंपैरिजन और कंपटीशन की वजह से अननेसेसरी प्रेशर्स क्रिएट हो गए. इंडिविजुअली कितनी कैपेसिटी है. अच्छा, कई बच्चे बैठ रहे हैं पढ़ने, नहीं उतना अंदर जा रहा है. दे आर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली. वो जान पूछ के नहीं कर रहे, नहीं उनकी ग्रास्पिंग पावर उतनी है. तो हमें बस उतना ही उस बात को एक्सेप्ट करके प्यार से, विदाउट अगेन बीइंग क्रिटिकल एंड कंपेयरिंग, धीरे धीरे उनकी उतनी कैपेसिटी से हम उनको थोड़ा सा और बढ़ा पाएंगे. बट वी कैन नॉट क्रिएट मिरेकल कि अगर आप इतनी कैपेसिटी पे और आप कहें ये बच्चा फर्स्ट आ जाए. इट्स एन अननेसेसरी प्रेशर. सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने ऊपर कितने प्रेशर्स रखते हैं और अपने बच्चों के ऊपर कितने प्रेशर्स रखते हैं. प्रेशर रख के जो जीवन में चलेगा वो तो वैसे ही थकता जाएगा. इट्स लाइक बोझ रख के अपने ऊपर चलते गए. तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और स्पिरिचुअली हमें ये समझ में आ जाता है कि आत्मा है, अपने पिछले संस्कार लेकर आई है, अपने पिछले कार्मिक पैटर्न्स भी लेकर आई है. किसी आत्मा के अंदर इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन किसी में विशेषता कोई और होगी. यू नो, अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन व्हाई नॉट अप्रिशिएट दैट चाइल्ड फॉर द सो मेनी अदर क्वालिटीज़. जैसे आई वॉज टॉकिंग टू अ फैमिली ऑफ फोर. अब दो भाई हैं, उनके दो दो बच्चे हैं. सिर्फ एक बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, बाकी थ्री आर फर्स्ट इन क्लास. एंड जो चौथा है वो पास ही थोड़ा मुश्किल से होता है. अब बाकी लड़कियां हैं, ये लड़का है. लड़के के नंबर कम आ रहे हैं घर के अंदर. तीनों बेटियां बिना मेहनत के फर्स्ट सेकंड ऐसे आ रही हैं. तो पूरा घर का वातावरण इस बेटे का क्या होगा? इज इट कोई विशेषता? कहते ओ, वो जितना सबका ध्यान रखता है, वो जितना केयरिंग है, हम में से अगर किसी को भी कुछ हो जाए वो सबसे पहले करता है, हर एक की दवाई, हर एक. वो हमारी बेटियों के अंदर वो नहीं है. बट देन हु इज़ लुकिंग एट दैट? उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे. अगर उसको उसकी क्वालिटीज़ के लिए हम अप्रिशिएट करते जाते हैं, हम उस बच्चे की यू नो इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो वो उसके नंबर भी थोड़े से बढ़ जाएंगे. क्योंकि उसकी मन की स्थिति अच्छी हो गई.
आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे एक बात एंडोर्स कराना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, उसके वो इंटेलिजेंट, मतलब उसके मार्क्स बहुत नहीं आते हैं, वो बहुत बड़ा पेंटर भी नहीं है, बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छी गाना भी नहीं गा सकता, उसके पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि उसे मतलब अलग करे, दूसरों से अलग करे, और नहीं है, नेचुरली नहीं है कोई ऐसा टैलेंट, तो क्या तब भी वो एक अच्छा इंसान बन के अपने आप को एक अच्छी जगह पर लेकर जा सकता है?
अच्छा इंसान बनने के लिए तो वैसे भी इनमें से कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू बी अ पेंटर टू बी अ गुड पर्सन. गुड पर्सन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड अचीविंग प्रोफेशनली इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी.
अच्छा, right? अचीव कर सकता है कि नहीं कुछ भी?
हम सब अपने जीवन को देख लें और अपने आसपास के जीवन को, सबको देख लें. आज हमारे मार्क्स हमसे कोई नहीं पूछ रहा. Nobody asks कि हमारे नंबर कितने हैं, एंड बाकी हमने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किया वो भी कोई नहीं पूछ रहा. लेकिन हम अपनी टैलेंट भी नहीं कहेंगे, हम अपनी क्वालिटीज से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं. किसी को फर्स्ट जॉब मिलने में थोड़ी सी मुश्किल अगर आ भी जाए तो आ जाए, लेकिन फर्स्ट जॉब के बाद तो कम्प्लीटली वो अपनी क्वालिटी से आगे बढ़ेंगे. जिसके अंदर टीम स्पिरिट है, जिसके अंदर कोऑपरेट करके औरों के साथ एडजस्ट करके वो आगे बढ़ता जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो प्रोफेशन भी ऐसा चूज करेगा जिसके अंदर उसकी ये सारी क्वालिटीज़ यूज होंगी. किसी के अंदर केयर करने की क्वालिटी है, देन देर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस जिसमें वो हो सकते हैं. वी नीड टू रिमेम्बर कि हमने बैलेंस नहीं रखा. अचीव करते करने के लिए हमने वैल्यूज़ को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, एंड फिर हमने अचीव करने के लिए वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी किया. तो इमोशनल स्ट्रेंथ कम होती गई. वी डोंट, दिस इज़ नॉट एन इमेजिनेशन, दिस इज़ प्रैक्टिकल प्रूफ कि हम सब देख लें कि सक्सेसफुल कौन, द वन हु वाज़ अ नाइस पर्सन. सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ वो कितने खुश हैं आज. सक्सेसफुल नीड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ कि आपका कितना प्रॉफिट है आज, लेकिन आप कितने खुश हैं आज, आप कितने हेल्दी हैं आज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रिश्ते आज कितने प्यारे हैं. आप हो सकता है आपने बहुत अचीव किया, लेकिन आप अकेले रह रहे हैं क्योंकि आपके किसी के साथ नहीं बन रहे. इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल दैट सक्सेस फॉर योर सेल्फ देन इट्स ओके, बट एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल. लेकिन जो खुश है, अंदर संतुष्ट है, वो कम में भी संतुष्ट हो जाता है. और कोई है जो इतना कुछ पा लिया लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं है. सो दिस इज समथिंग हमें खुद चेक करना है. लेकिन एक दूसरे को देखते देखते हम सब कुछ जानते हुए भी, मालूम होते हुए भी, लेकिन नहीं, यू नो दैट हैबिट ऑफ लुकिंग एवरीवेयर अराउंड मेक्स अस चेंज आवर पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस.
ह्यूमन बीइंग्स की कई डायमेंशंस हैं, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, इंटरपर्सनल भी है. और उन सब डायमेंशंस को इकट्ठा लेकर बैलेंस तरीके से अगर हम चलेंगे तो खुश होंगे. एक बहुत ज़्यादा होगा और बाकी बहुत कम होंगे, नहीं होंगे. जहाँ तक लोगों की ये सोचना है कि आगे जाके क्या करेगा, हम उसे उस समय देख रहे हैं. 10 साल बाद उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी हम ये नहीं सोचते. लेकिन अगर हम इस समय उसे जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाते हैं, देन डेफिनेटली वो कहीं पहुंचेगा. अभी तो ऐसा क्यों है मेरे साथ ही, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार में ही ऐसा क्यों हुआ. अगर वो करते रहेंगे तो जो पोटेंशियल है वो भी तो नहीं रहेगी. एक्चुअली हमें बच्चों को किस तरह से जिस एटमॉस्फेयर में भी हैं उसको सही तरह से समझकर कोप करने की शक्तियां देने की ज़रूरत है. बट एज अ चाइल्ड सबसे पहली ज़रूरत उसकी है एक्सेप्टेंस बाय पीपल अराउंड. पीपल ही लव्स एंड अदर्स लव दैट पर्सन. वहाँ पर सही एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि उसे अपनी शक्तियों को पहचानने की और उनको डायरेक्शन दिखाने की एज एन एडल्ट हमारी ज़रूरत है. वी cannot be people who can who will say कि अच्छा ये तुम्हारी डायरेक्शन है, अब यहाँ पे भागो. वी शुड बी साइलेंट गाइड्स. बट हमारा फोकस क्योंकि अपनी डिज़ायर्स में है और हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ बनकर अपना भी नाम रोशन करे, मेरा भी नाम रोशन करे, तो हम उसको एक वो डायरेक्शन जो हमें लगता है सही, बिकॉज वी बिलीव कि इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं तो सही सोच ही रहा हूँ, विदाउट रियलाइजिंग कि वो भी एक आत्मा है, अपने संस्कारों के साथ है, अपनी माइंड की कैपेसिटीज के साथ है. अगर उसे उनको सही यूज़ करना आ जाएगा तो वो आगे जाके बहुत कुछ कर लेगा. और आपका वो रोल एज अ साइलेंट गाइड, व्हेनेवर रिक्वायर्ड जस्ट अ लिटिल पुश, नॉट इवन पुश, जस्ट अ लिटिल डायरेक्शन.
आई थिंक प्रेजेंस आल्सो, एक्टिव प्रेजेंस.
जब आप एनवायरनमेंट की बात कहेंगे कि उसके पोटेंशियल को बढ़ाने का एनवायरनमेंट, तो पोटेंशियल को हमें नहीं बढ़ाना, हमें एनवायरनमेंट देना है. पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा, बट देन व्हाट इज दैट एनवायरनमेंट, व्हाट इज दैट एनवायरनमेंट? एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो एंग्जाइटी, एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो फियर,
एक्सेप्टेंस.
हाँ, तो वो हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. आज हम कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं? इवन अगर हम बाहर से चुप हो गए, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा आई एक्सेप्ट माई चाइल्ड, लेकिन अंदर 24/7 चल रहा है, इसका आगे क्या होगा? तो व्हाट्स द मैसेज गोइंग एंड व्हाट्स द एनवायरनमेंट? द पेरेंट्स फील कि वी लव आवर चिल्ड्रन, बट लव एंड एंग्जाइटी इकट्ठे तो नहीं चलेगी.
इनफैक्ट यू नो सो मेनी टाइम्स पेरेंट्स से वो सिंगर बनना चाहता है, आई वॉन्ट दैट चाइल्ड टू बी द टॉप सिंगर, देन दे से दैट उसके लिए फिर वो सारे म्यूजिक वाले वो शुरू करने, सारे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने, ये करने. I think the child doesn't want that. Or do you think it's right?
The child just wants to sing. It's so simple. The child only wants to sing. But we, हमने उसके साथ क्या जोड़ दिया कि आपने जो करना है उसमें टॉप पे आना है, उसमें फर्स्ट आना है. तो वो फिर उसने इंजॉय करने के बजाय उसका उसके ऊपर प्रेशर हो गया. हर चीज़ पर प्रेशर. आज सिर्फ पढ़ाई पे प्रेशर नहीं है ना, इन सारी चीज़ों पे एक्सेल 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 एंड कम फर्स्ट. तो फिर जो इन्जॉय करने के लिए भी शुरू किया था, नॉट इन्जॉइंग इट एनी मोर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर आई इन्जॉय और नो, वेदर आई कम फर्स्ट और नो, वो तो बाद की बात है. कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, पेरेंट की कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव डाल रही है. नर्चरिंग का जो रोल है वो ब्लॉक हो रहा है. पेरेंट्स लव एंड पावर नर्चर्स अ चाइल्ड, लेकिन पेरेंट्स एंग्जाइटी विल डू द ऑपोजिट ऑफ नर्चरिंग. हमारी कौन सी कॉन्स्टेंट फीलिंग उसको जा रही है. कुछ साल पहले तक पेरेंट्स जब थोड़े ईजी थे, अपने बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखते थे, तो उनके मन में एंग्जाइटी भी नहीं थी, तो उनका जो नेचुरल लव है वो बच्चे तक पहुंचता है. तो पेरेंट का लव फॉर द चाइल्ड इज नेचुरल, लेकिन जहां बीच में एंग्जाइटी आई, तो आपका अपने प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो गई. अब आपकी एंग्जाइटी की एनर्जी रेडिएट कर रही है, एंग्जाइटी की एनर्जी रेडिएट कर रही है, प्यार की नहीं रेडिएट कर रही है. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द चाइल्ड. तो आपने कौन सा एनवायरनमेंट दिया. इवन इफ यू से हाँ आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं है, जस्ट बी. यू नो हमारा सिर्फ डूइंग, आई एम रेडी टू डू. हाउ एम आई गोइंग टू बी फॉर माई चाइल्ड. आई हैव टू बी एंग्जाइटी फ्री, फियर फ्री. लेट द चाइल्ड, वो आत्मा क्रिएट करेगी अपनी डेस्टिनी. मुझे सिर्फ रोल ये मिला था कि मुझे उस आत्मा को उस रास्ते पे प्यार देना है, पावर देनी है, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा. लेकिन आज मेरी ही इमोशंस उसके पोटेंशियल को कम कर रहे हैं. तो एक्चुअली वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग द डैमेजिंग इफेक्ट इन द चाइल्ड्स लाइफ.
अभी वो जो डैमेजिंग इफेक्ट है उसको हम एक और लेवल तक ले गए. वो लेवल है रियलिटी शोज, जिसमें कि बच्चा सिर्फ ये नहीं सीखता कि मुझे दूसरों से ज्यादा अच्छा कंपटीशन में कैसे करना है, पर ये कि वोट्स कैसे मांगने हैं,
मैनिपुलेशन,
किस टीचर को आपने किस तरह से अपनी तरफ करना है, वगैरह वगैरह. सो दोज आर द गेम्स जो आमतौर पे एडल्टहुड में लोग सीखते हैं, वो हम वहां से सिखाना शुरू करते हैं. एंड द एंग्जाइटी दैट पीपल हैव कि आपने उसमें अगर इफ यू हैव नॉट मेड इट दैट मीन्स लाइफ इज ओवर. वो अगर हम बदल कर दैट इफ यू आर गुड एनफ इन वॉट एवर यू डू, फर्स्ट थिंग इज एसिस्ट शिवानी सेड कि आपको अपने अंदर तो खुशी मिली, परिवार के अंदर खुशी मिली. नाउ वंस यू डू समथिंग दैट यू लाइक टू डू, तो आपकी वो जो इच्छा है वही आपको आगे तक लेके जाती है. देन यू विल डेफिनेटली कीप ऑन अचीविंग एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन गिविंग एनकरेजमेंट दैट्स ओके. लेकिन encouragement not as a way of that person feeling the stress, but encouragement out of love, out of care, out of appreciation. When that happens, तो चीजें अपने आप अपने लगती
हैं. Very true, you know, and somewhere we are forgetting that. अब मैं वापस उस पे आना चाहती हूँ डॉक्टर अवधेश शर्मा जी. जब आपने कहा कि वो जो सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए स्ट्रेस के, वो सिम्टम्स जो अब हमें दिखने शुरू हो गए, चाहे वो बच्चा ज़्यादा रोने लग गया है, खाना नहीं खा रहा, रिक्लूज हो गया है, अपने आप में अंदर चला गया है, या बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं उसके, दिस इज़ अ टाइम वेन पेरेंट्स पैनिक, यू नो. सो वॉट इज देयर रोल एंड हाउ इट कैन बी, यू नो, द थिंग्स कैन बी रिवर्स्ड.
कुछ चीज़ें पेरेंट्स को पहले ये देखनी पड़ेंगी कि क्या उनका ही बिहेवियर तो बच्चा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. अगर जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो दूसरों से झगड़ते हैं, या वो एग्रेसिव हैं जो कि बच्चा शायद पिकअप कर रहा है. जब उनका आपस में टेंशन होती है, देन डू दे गो इनटू अ शेल, डू दे बिकम क्वाइट, शायद बच्चा कुछ हद तक वो चीज़ें पिक कर रहा है, दैट्स वन. और उसके लिए उनको पैनिक इनिशियली हुआ, लेकिन एंड ऑफ लाइफ नहीं है, एक फेज है जिसको ठीक किया जा सकता है. इट डजेंट मीन कि बच्चे को अगर थोड़ी देर के लिए कोई इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, अनलेस द चाइल्ड इज सुइसाइडल, अनलेस द चाइल्ड हैज स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग, अनलेस द चाइल्ड इज इंडल्जिंग इन सर्टेन एक्ट्स जो कि दूसरों के लिए हार्मफुल हैं. दीज आर थिंग्स विच इफ दे हैव स्लोली कॉमन, तो वो उनको ठीक किया जा सकता है. अपने बिहेवियर को देखने के बाद ये देखें कि घर के एटमोसफियर में या स्कूल के एटमॉस्फेयर में कोई कंटिन्यूड स्ट्रेस है, या इमीडिएटली कुछ हुआ. अगर कोई चीज़ एक्यूटली होती है, कल तक ठीक थी आज हुई है, देन पॉसिबली देर इज सम अदर रीज़न, सम काइंड ऑफ एन अब्यूज और सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, जिसको कि देखना ज़रूरी है. और कई बार वो ट्रॉमाज इमीडिएटली दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से बैठ के और बच्चे से पूछें या आसपास वालों से पूछें तो पता लग जाता है. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉट टू बी वेरी रिक्लूसिव, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स उस समय में ये सोच के कि बच्चे के जीवन का सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे, उसका उसके ऊपर आगे जाके क्या असर होगा, सो दे डोंट टॉक टू एनीवन, दे बिकम एक्चुअली मच मोर रिक्लूसिव देमसेल्व्स. सो टॉकिंग इट ओवर विद द फ्रेंड्स ऑफ द चाइल्ड, मे बी द पेरेंट्स ऑफ द फ्रेंड्स और मे बी द स्कूल अथॉरिटीज, एंड टॉकिंग टू द चाइल्ड इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे. कई बार उनके पास भी समय आजकल पेरेंट्स के पास कम है, तो भी चाहते हैं कि एक ही दिन में फटाफट सब कुछ ठीक ठाक हो ताकि कल से बिजनेस एज यूजल हो जाए. तो उसमें बच्चे को भी समय देना. एंड थर्ड थिंग इज जस्ट योर प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ सेइंग दैट ओके इफ देयर इज अ क्राइसिस वी आर देयर इन इट टुगेदर एंड वी विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट. वहां पे भी वही प्रेशर वाली चीजें ना शुरुआत करें. एंड टू बी अवेयर कि बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये चीज़ उसको इफेक्ट कर रही है और ज़्यादा दिन तक चल रही है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सीकिंग सम हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट. और बड़े शहरों में तो आजकल स्कूलों में काउंसलर्स हैं अवेलेबल, बट अल्टीमेटली द वर्क विल हैव टू हैपन विद द चाइल्ड, बट अलॉन्ग विद द चाइल्ड विद द फैमिली, क्योंकि शायद उनको अपने करने के तरीके, बच्चे को समझाने के तरीके या जिस तरह से वो घर का वातावरण है उनको बदलना पड़ेगा. एंड इट विल हैव टू बी अ स्लाइटली लॉन्ग टर्म प्रोसेस रादर देन कि बच्चा बदले सब कुछ ठीक हो जाए. और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशली बच्चों के लिए कि बहुत डिफरेंट बिहेवियर्स ना हो. माँ कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहा है, या माँ बाप कुछ कह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, तो वो ना हो. बच्चों को सेम तरह का एक एटमॉस्फेयर मिले. एंड लास्टली ये सच बात है कि बच्चों में भी तनाव होता है, बच्चों में भी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं. उसको समझकर और जितना जल्दी इसको ठीक करेंगे उतना ये प्रॉब्लम एडोलेसेंस में या एडल्टहुड में नहीं जाएगी और बच्चे की पर्सनैलिटी पर असर नहीं करेगी, तो उतना जल्दी एड्रेस करें. पर अगर थोड़ा समय बीत भी गया है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बच्चों में रेजिलियंस भी होती है. तो अगर उनको ठीक डायरेक्शन मिल जाए, देन दे कैन कम बैक टू नॉर्मलसी मच फास्टर.
एंड यू द वे यू सेड कि इट्स अ टाइम पर्सनालिटी अभी डेवलप हो रही है, तो किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सकता है. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच. ओम शांति.
ओम शांति.
चिल्ड्रन कुड हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक lack of attention in what they are doing, improper interaction with peers, not sufficient bonding with parents, excessively competitive, excessive bullying or temper tantrums. Parents' preference for a child because of their gender, age or a particular talent could become the cause of stress in the other child of the family. Comparison with other children sows seeds of bitterness which can stay for a lifetime. Not able to perform as well as others in schools makes some children withdraw from others. This stress lowers the capacity to perform. Many children today withdraw from social relations and are engaged with technology. A child's value system and innate qualities decide his ability to be happy, healthy, and have beautiful relationships in the future. A happy and contented person is truly successful.